एक तत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार और ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी पहली मेजबान। आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने जा रहे हैं जिसने मुझे व्यक्तिगत रूप से काफी सोचने पर मजबूर किया।
और मैं हूँ आपका दूसरा मेजबान। आज की किताब वाकई खास है, डेविड ब्रूक्स की द रोड टू कैरेक्टर। ये उन सवालों से जूझती है जो शायद हम सब कभी ना कभी खुद से पूछते हैं। एक सफल जीवन क्या है और उससे भी बढ़कर एक सार्थक जीवन क्या है।
बिल्कुल, आज के दौर में ये किताब इसलिए और भी जरूरी हो जाती है क्योंकि हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहाँ बाहरी सफलता, अच्छा करियर, पैसा, शोहरत, इन सब पर बहुत ज्यादा जोर है।
हाँ, जिसे ब्रूक्स रिज्यूमे गुण कहते हैं, वो चीजें जो हम अपने सीवी पर लिखते हैं दिखाने के लिए। सही कहा। और इस दौड़ में कहीं ना कहीं वो चीजें पीछे छूट जाती हैं जो इंसान के अंदरूनी चरित्र को बनाती हैं, जैसे ईमानदारी, विनम्रता, साहस या प्रेम करने की क्षमता।
बिल्कुल, ब्रूक्स इन्हें प्रशंसा गुण कहते हैं, यानी वो गुण जिनके लिए लोग हमें सचमुच याद रखते हैं, शायद हमारे जाने के बाद भी।
और ये जो असंतुलन है, ये थोड़ा परेशान करने वाला है। कई बार देखती हूँ बाहर से बेहद सफल दिखने वाले लोग भी अंदर से खालीपन या क्या कहें, एक दिशाहीनता महसूस करते हैं।
ये एक आम अनुभव बनता जा रहा है शायद। तो आज हम ब्रूक्स के नजरिए से समझने की कोशिश करेंगे कि हम सिर्फ उपलब्धियों के पीछे भागने के बजाय एक गहरा और मजबूत चरित्र कैसे बना सकते हैं।
क्या ये मुमकिन है आज की दुनिया में? ये सवाल है।
यही सवाल इस किताब के केंद्र में है। चलिए पहले लेखक डेविड ब्रूक्स के बारे में थोड़ी बात कर लें। वो कोई अनजान नाम तो है नहीं, न्यूयॉर्क टाइम्स के जाने माने कॉलमिस्ट हैं।
हाँ, और पीबीएस न्यूज आवर पर भी दिखते हैं टिप्पणीकार के तौर पर।
बिल्कुल, और उनकी खासियत ये है कि वो सिर्फ राजनीति पर ही नहीं लिखते, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, नैतिकता, संस्कृति, इन सब पर उनकी गहरी पकड़ है। उनकी पिछली किताबें भी जैसे बोबोज इन पैराडाइज या द सोशल एनिमल।
हाँ, काफी चर्चित रही हैं वो भी। उन्होंने सामाजिक चलन और मानवीय व्यवहार पर काफी कुछ लिखा है।
और द रोड टू कैरेक्टर लिखने के पीछे उनका एक निजी पहलू भी है जो इसे और दिलचस्प बनाता है। वो खुद मानते हैं कि एक दौर में उनका अपना ध्यान भी बाहरी सफलता, यानी जिसे वो एडम आई कहते हैं, उस पर ज्यादा टिक गया था।
अच्छा।
हाँ, और इस किताब में वो बहुत ईमानदारी से अपनी इस यात्रा और अपने आत्मचिंतन को साझा करते हैं।
ये बात मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगती है। वो किसी ऊंचे आसन पर बैठकर उपदेश नहीं दे रहे।
नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि एक साथी यात्री की तरह हमें उस रास्ते पर ले जा रहे हैं जहां हम अपनी भूली हुई नैतिक जड़ों को फिर से खोज सके। वो उन सांस्कृतिक बदलावों के गवा रहे हैं जैसे सोशल मीडिया का बढ़ता प्रभाव, आत्मसम्मान पर जरूरत से ज्यादा जोर,
जिसने हमारे मूल्यों को कहीं ना कहीं बदला है।
हाँ, तो उनका नजरिया किसी नैतिक श्रेष्ठता से नहीं बल्कि एक खोजी और जिज्ञासु मन से आता है जो समझना चाहता है कि हम इंसान के तौर पर अपनी गहरी क्षमताओं को कैसे विकसित करें।
तो अगर इस किताब को संक्षिप्त में समझना हो तो क्या कहेंगे, इसका सार क्या है?
देखिए, ये किताब महज एक सेल्फ हेल्प गाइड नहीं है, ये मानव नैतिकता की एक गंभीर और गहरी पड़ताल है। ये हमारी आज की संस्कृति, जिसे ब्रूक्स बिग मी संस्कृति कहते हैं, जहां मैं, मेरा, मुझे पर बहुत जोर है, उसकी आलोचना करती है
और साथ ही रास्ता भी दिखाती है।
हाँ, साथ ही उन अंदरूनी ताकतों और गुणों को फिर से जगाने का रास्ता सुझाती है जिनसे चरित्र बनता है। ये उस आम धारणा को चुनौती देती है कि सफलता का मतलब सिर्फ पैसा कमाना, मशहूर होना या ऊंचा पद हासिल करना है।
ब्रूक्स कहते हैं कि ये परिभाषा न सिर्फ अधूरी है बल्कि खतरनाक भी हो सकती है।
बिल्कुल, ये किताब उन लोगों से बात करती है जो अपनी बाहरी उपलब्धियों के बावजूद अंदर एक खालीपन या असंतोष महसूस करते हैं।
तो उनका मेन तर्क क्या है? वो कहते क्या हैं?
उनका केंद्रीय तर्क ये है कि पिछले कुछ दशकों में हमारे समाज का फोकस बदला है। पहले जिसे वो चरित्र की संस्कृति कहते हैं वो हुआ करती थी, जहां विनम्रता, आत्मानुशासन और अपनी कमियों को स्वीकार करने पर जोर था।
वो टेढ़ी लकड़ी वाली बात।
हाँ, वही टेढ़ी लकड़ी वाली, क्रुकेड टिम्बर वाली मानवता। ये मानना कि हम सब में स्वाभाविक रूप से कुछ खामियां हैं और उनसे जूझना ही जीवन है।
और अब हम कहाँ आ गए, इस संस्कृति से हटकर?
अब हम उनके अनुसार पर्सनैलिटी कल्चर में जी रहे हैं। पॉप साइकोलॉजी और बाजारवाद ने मिलकर हमें सिखाया है कि आत्मसम्मान, आत्म अभिव्यक्ति और खुद से प्यार करना सबसे जरूरी है।
इसमें कुछ गलत तो नहीं लगता? सुनने में तो अच्छा है।
नहीं, अपने आप में गलत नहीं है, लेकिन ब्रुक्स का तर्क है कि इस चक्कर में हमने आत्मसंयम, कर्तव्य और विनम्रता जैसे मूल्यों को हाशिए पर डाल दिया है। हम चरित्र बनाने के लिए जरूरी नैतिक भाषा और आदतें भूलते जा रहे हैं।
तो क्या वो कोई समाधान सुझाते हैं या बस समस्या बताकर छोड़ देते हैं?
नहीं नहीं, समाधान सुझाते हैं, और वो समाधान देते हैं ऐतिहासिक हस्तियों की जीवनियों के जरिए। ये लोग कोई देवता नहीं थे, सब में अपनी अपनी कमियां थी, अपने अपने संघर्ष थे।
जैसे कि?
जैसे फ्रांसिस पर्किंस, ड्वाइट आइजनहावर, डोरोथी डे, जॉर्ज एलियट, इन जैसे लोगों के जीवन से ब्रुक्स उन गुणों को उजागर करते हैं जो चरित्र निर्माण के लिए अनिवार्य हैं। विनम्रता, अपनी कमजोरियों पर विजय पाना, किसी बड़े लक्ष्य के प्रति समर्पण, प्रेम करने और दुख सहने की क्षमता।
और शायद सबसे बड़ा संदेश ये है कि सच्चा संतोष और अर्थ खुद की खोज में उतना नहीं मिलता जितना खुद से ऊपर उठने में मिलता है, मतलब सेल्फ ट्रांसडेंडेंस।
बिल्कुल सही पढ़ा, यानी जब हम अपने छोटे मैं से आगे बढ़कर किसी बड़े उद्देश्य, किसी बड़े प्रेम या किसी समुदाय के प्रति खुद को समर्पित करते हैं। यहीं पर किताब का सबसे शक्तिशाली विचार आता है, एडम आई बनाम एडम टू।
हाँ, ये कॉन्सेप्ट तो बहुत ही दिलचस्प लगा मुझे, एडम आई बनाम एडम टू।
ये हमारी रोजमर्रा की कश्मकश को समझने का एक नया फ्रेमवर्क सा देता है। तो एडम आई कौन है?
एडम आई हमारे व्यक्तित्व का वो हिस्सा है जो महत्वाकांक्षी है, दुनिया में कुछ करना चाहता है, नाम कमाना चाहता है, करियर बनाना चाहता है। ये बाहरी दुनिया पर केंद्रित है, निर्माण करना, उत्पादन करना, जीतना, स्थिति हासिल करना।
यानी हमारे रिज्यूमे गुण।
हाँ, वो सब जो हम दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि हमने क्या किया है, ये हमारी व्यावहारिक बुद्धि का प्रतीक है।
और एडम टू वो क्या है? एडम टू हमारा आंतरिक स्व है, ये विनम्र है, नैतिक है, ये बाहरी सफलता से ज्यादा अंदरूनी अच्छाई और शांति चाहता है, ये एक साफ जमीर, गहरी नैतिकता और सुसंगत जीवन जीना चाहता है। एडम टू सिर्फ अच्छा करना नहीं चाहता, वो अच्छा होना चाहता है।
ये हमारे प्रशंसा गुण है, मतलब जो बताता है कि हम असल में कौन हैं।
बिल्कुल, ये हमारी नैतिक तर्क शक्ति से जुड़ा है।
ये फर्क तो बहुत साफ है, लेकिन ब्रूक्स का कहना है कि गड़बड़ कहाँ हो रही है, संतुलन कहाँ बिगड़ रहा है।
गड़बड़ संतुलन में ही है। ब्रूक्स कहते हैं कि हमारा पूरा समाज, हमारी शिक्षा व्यवस्था, हमारी कॉरपोरेट संस्कृति, ये सब एडम वन को मजबूत करने में लगी हुई हैं। हमें सिखाया जाता है कि महत्वाकांक्षी बनो, सफल बनो, आगे बढ़ो, और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। एडम वन जीवन जीने के लिए जरूरी है।
हाँ, दुनिया में रहना है तो ये तो चाहिए ही।
लेकिन इस प्रक्रिया में एडम टू को पोषित करने वाली बातें पीछे छूट गई हैं, वो नैतिक ढांचा, वो सांस्कृतिक आदतें, वो कहानियां जो हमें विनम्रता, आत्मसंयम, अपनी गलतियों से सीखने, दूसरों के लिए त्याग करने की प्रेरणा देती थीं, वो कमजोर पड़ गई हैं। हम एडम टू को विकसित करने का तरीका एक तरह से भूलते जा रहे हैं।
इसका नतीजा क्या हो रहा है, क्या हम देख सकते हैं इसे अपने आसपास?
ब्रुक्स मानते हैं कि इसका नतीजा है बिग मी संस्कृति का उदय। आत्ममुग्धता, जिसे नार्सिसिज्म कहते हैं, वो बढ़ रही है। लोग अपनी उपलब्धियों का बखान करने में लगे हैं, सोशल मीडिया पर अपनी परफेक्ट इमेज बनाने की होड़ है।
हाँ, ये तो दिखता है।
पर इस चमक दमक के पीछे अक्सर एक नैतिक खोखलापन और अंदरूनी खालीपन छिपा होता है। भले ही रिज्यूमे शानदार हो, पर प्रशंसा वाले गुणों की कमी खलती है।
यर स्टेटस, पैसे का दबाव कितना बढ़ता जा रहा है, पारंपरिक मूल्य और चरित्र की बातें कई बार पिछड़ी हुई सी लगने लगती हैं।
बिल्कुल, ये एक वैश्विक चलन लगता है। ब्रूक्स इसी बदलाव को चरित्र की संस्कृति से व्यक्तित्व की संस्कृति में संक्रमण कहते हैं। पहले जोर इस पर था कि आपका आंतरिक नैतिक ढांचा कितना मजबूत है, आप कितने अनुशासित हैं, अपनी कमियों, टेढ़ी लकड़ी को लेकर कितने सजग हैं,
और अब फोकस बाहरी चमक दमक पर है। आप कितने आत्मविश्वासी दिखते हैं, कितने लोकप्रिय हैं, आपकी पर्सनल ब्रांड कितनी स्ट्रांग है।
हाँ, कुछ वैसा ही। पॉप साइकोलॉजी और उपभोक्तावाद ने मिलकर हमें सिखाया कि खुद को अच्छा महसूस कराना, अपनी इच्छाओं को पूरा करना, खुद से प्यार करना ही सबसे अहम है। आत्मसंयम की जगह आत्ममुक्ति ने ले ली।
तो ब्रूक्स ये नहीं कहते कि आत्मसम्मान बुरा है?
नहीं, वो ये नहीं कहते, लेकिन वो चेताते हैं कि जब ये जरूरत से ज्यादा हो जाता है और विनम्रता की जगह ले लेता है, तो चरित्र का विकास रुक जाता है।
अच्छा, किताब में एक और दिलचस्प कॉन्सेप्ट है, आमंत्रित स्व बनाम स्व आविष्कार, सेल्फ इन्वेंशन। इसका क्या मतलब है, थोड़ा और समझाएंगे?
हाँ, ये बहुत गहरा विचार है। आज की संस्कृति हमें बताती है कि हमें खुद को खोजना है या बनाना है, सेल्फ इन्वेंट करना है। हम पूछते हैं, मैं जीवन से क्या चाहता हूँ?
हाँ, ये आम सवाल है।
लेकिन ब्रूक्स फ्रांसिस पर्किंस का उदाहरण देते हैं, जो रोजवेल्ट के मंत्रिमंडल में श्रम मंत्री थी। उन्होंने अपने जीवन का रास्ता इस सवाल से तय नहीं किया।
तो फिर किस सवाल से?
उन्होंने पूछा, जीवन मुझसे क्या मांग रहा है, या इस वक्त दुनिया को मुझसे क्या चाहिए। उनका जीवन किसी बाहरी जरूरत, किसी सेवा की पुकार, जिसे वोकेशन कहते हैं, उसका जवाब था। इसे ब्रूक्स आमंत्रित स्व कहते हैं, जब आपका उद्देश्य आपकी निजी इच्छाओं से नहीं बल्कि किसी बाहरी मांग या जिम्मेदारी से तय होता है।
मतलब आप खुद को बनाते नहीं बल्कि किसी उद्देश्य के लिए समर्पित होने के लिए आमंत्रित महसूस करते हैं।
बिल्कुल, ये पूरी सोच को ही पलट देता है। फोकस मैं से हटकर हम या कर्तव्य पर चला जाता है,
और इसी से जुड़ा हुआ है शायद संघर्ष और आत्मविजय का महत्व।
हाँ बिल्कुल, ब्रूक्स ड्वाइट आइजनहावर का उदाहरण देते हैं। आइजनहावर जो बाद में अमेरिका के राष्ट्रपति बने, उनमें भयानक गुस्सा था। उन्हें पता था कि ये गुस्सा उनके करियर और रिश्तों को तबाह कर सकता है।
अच्छा?
हाँ, उन्होंने जिंदगी भर सचेत रूप से इस पर काबू पाने के लिए संघर्ष किया। वो डायरी लिखते थे, खुद को अनुशासित करते थे।
तो संदेश ये है कि चरित्र बैठे बिठाए नहीं बनता, ये कोई गिफ्ट नहीं है।
नहीं, बिल्कुल नहीं। संदेश ये है कि चरित्र हमारी अंदरूनी कमजोरियों के खिलाफ लगातार लड़ने से बनता है। ये अंदरूनी लड़ाई और उस पर पाई गई जीत बाहरी दुनिया की जीतों से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है चरित्र निर्माण के लिए। यह आसान नहीं है, इसमें पीड़ा है, लेकिन यही हमें गढ़ता है।
डोरोथी डे का उदाहरण भी इसी ओर इशारा करता है ना? वो एक सामाजिक कार्यकर्ता थी।
हाँ, जिन्होंने गरीबों और बेघरों के लिए काम किया। उनका जीवन आसान नहीं था, बिल्कुल नहीं। उनका जीवन कठिनाइयों, त्याग और एक बेहद मुश्किल लक्ष्य के प्रति अटूट प्रतिबद्धता से भरा था। ब्रूक्स दिखाते हैं कि चरित्र आराम और सुविधा में नहीं बल्कि मुश्किलों को अपनाने, पीड़ा सहने और किसी सही काम के लिए डटे रहने से बनता है।
संघर्ष हमें बदलता है, हमें गहरा बनाता है।
हाँ, यही पॉइंट है।
किताब प्रेम को भी एक अलग नजरिए से देखती है, एक नैतिक शिक्षक के रूप में। जॉर्ज एलियट, विक्टोरियन युग की महान उपन्यासकार का उदाहरण यहाँ कैसे फिट होता है?
जॉर्ज एलियट का जीवन और उनके लेखन दिखाते हैं कि सच्चा, गहरा और प्रतिबद्ध प्रेम हमें हमारी आत्मकेंद्रता से बाहर खींचता है। जब हम किसी से गहराई से जुड़ते हैं तो हमें सहानुभूति, निष्ठा, त्याग और दूसरे की जरूरतों को समझने की कला सीखनी पड़ती है।
मतलब प्रेम हमें खुद को भूलकर दूसरे पर ध्यान देना सिखाता है।
हाँ, और ये चरित्र के विकास के लिए बहुत जरूरी है। ये हमारे छोटे मैं को तोड़ता है, उसे विकेंद्रित करता है।
और अंत में विनम्रता और व्यवस्थित प्रेम, ऑर्डर्ड लव का विचार। विनम्रता को अक्सर कमजोरी समझ लिया जाता है। लोग सोचते हैं विनम्र होना मतलब दबके रहना।
हाँ, लेकिन ब्रूक्स के लिए विनम्रता कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बुनियादी ताकत है। यह अपनी सीमाओं की, अपनी अज्ञानता की और अपनी टेढ़ी लकड़ी वाली प्रकृति की सटीक समझ है। ये जानना कि आप सब कुछ नहीं जानते, कि आप में भी कमियां हैं, यही सीखने और बढ़ने की पहली शर्त है।
ये बिग मी का सटीक इलाज है।
बिल्कुल, सेंट ऑगस्टीन और सैमुअल जॉनसन जैसे चिंतकों ने भी अपनी कमियों को बहुत गहराई से महसूस किया था। वो अपनी मानवीय अपूर्णताओं के प्रति बेहद सजग थे।
और इसी सजगता से व्यवस्थित प्रेम का विचार जुड़ता है।
हाँ, इसका मतलब है सही चीजों को सही क्रम में, सही मात्रा में महत्व देना और प्रेम करना। जैसे, क्या हम सच्चाई को आराम से ज्यादा महत्व देते हैं? क्या हम अपने परिवार को अपने काम से ज्यादा प्यार करते हैं? क्या हम ईश्वर या किसी उच्च सिद्धांत को अपने अहंकार से ऊपर रखते हैं?
ये प्राथमिकताएं तय करना।
हाँ, ये प्राथमिकताएं तय करना ही व्यवस्थित प्रेम है, और ये चरित्र का एक अहम हिस्सा है।
वाह, काफी कुछ है सोचने के लिए इसमें। अगर हम इन सभी बातों को समेटकर कुछ मुख्य संदेश निकालना चाहें तो क्या होंगे, मतलब कि टेक अवेज?
मेरे ख्याल से पहला और सबसे बड़ा संदेश है एडम आए बनाम एडम टू का द्वंद्व, और आज की दुनिया में इसका बिगड़ा हुआ संतुलन। हमें दोनों चाहिए, लेकिन हमने एडम आए को जरूरत से ज्यादा और एडम टू को जरूरत से कम महत्व दे दिया है।
और भारत में भी हम ये देख सकते हैं, करियर और स्टेटस का दबाव इतना है कि पारंपरिक मूल्य, नैतिकता, सादगी जैसी बातें शायद युवाओं को कम आकर्षक लगती हैं।
सही बात है। दूसरा है संघर्ष और टेढ़ी लकड़ी का विचार। चरित्र थाली में सजाकर नहीं मिलता। ये मुश्किलों का सामना करने, अपनी कमजोरियों से लड़ने और उन्हें स्वीकार करने से बनता है। हमारी खामियां अभिशाप नहीं बल्कि चरित्र गढ़ने के अवसर हैं।
भारत में हम अक्सर विपरीत परिस्थितियों में भी टिके रहने की रेजिलियंस की बात करते हैं, ये उसी से जुड़ा है शायद।
हाँ बिल्कुल। तीसरा संदेश शायद विनम्रता का है। ये सिर्फ अच्छा गुण नहीं बल्कि एक बुनियादी जरूरत है अगर हम सच में सीखना और बेहतर बनना चाहते हैं। ये उस बिग मी वाले अहंकार का इलाज है।
भारतीय संस्कृति में भी विनम्रता और विनय को हमेशा से महत्व दिया गया है, हालांकि आजकल ये थोड़ा कमजोर पड़ता दिख रहा है शायद।
हाँ शायद। चौथा है आमंत्रित स्व का विचार। जीवन का अर्थ शायद सिर्फ अपनी खुशी या अपनी मर्जी पूरी करने में नहीं है, बल्कि किसी बड़े उद्देश्य, किसी जिम्मेदारी या सेवा के प्रति समर्पित होने में है।
ये भारतीय दर्शन के कर्म और कर्तव्य के सिद्धांतों से काफी मिलता जुलता है।
बिल्कुल। और पांचवा, प्रेम की परिवर्तनकारी शक्ति। गहरा और प्रतिबद्ध प्रेम हमें स्वार्थ से ऊपर उठाकर सहानुभूति और त्याग सिखाता है। ये एक सार्वभौमिक सत्य है और भारत जैसे देश में जहां पारिवारिक और सामुदायिक रिश्ते इतने अहम हैं, ये बात और भी मायने रखती है।
हाँ, ये सारे सूत्र मिलकर एक गहरी तस्वीर बनाते हैं। ये हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि हम किस तरह का जीवन जी रहे हैं और किस तरह का जीना चाहते हैं।
इस किताब में कुछ पंक्तियां या विचार ऐसे हैं जो सीधे दिल पर असर करते हैं, बहुत यादगार हैं।
हाँ बिल्कुल। कुछ खास विचारों को अगर हम याद करें तो
पहला तो वही बुनियादी फर्क, रिज्यूमे गुण, हम क्या करते हैं बनाम प्रशंसा गुण, हम कौन हैं, अंत में क्या ज्यादा मायने रखेगा, इस पर सोचना जरूरी है।
सही बात है। दूसरा वो टेढ़ी लकड़ी वाला विचार, हम सब में जन्मजात खामियां हैं, हम परफेक्ट नहीं हैं और अपनी इन्हीं कमजोरियों से जूझना ही जीवन का असली ड्रामा है। ये हमें खुद के प्रति और दूसरों के प्रति ज्यादा दयालु बनाता है ना?
ये सीखना बंद न करने की कुंजी है।
और चौथा वो विरोधाभास की सच्ची खुशी और संतोष सीधे सीधे खुशी खोजने से नहीं मिलते, बल्कि खुद को भूल कर किसी बड़े काम में लग जाने से मिलते हैं, सेल्फ ट्रांसेंडेंस से।
हाँ ये थोड़ा उल्टा लगता है पर शायद यही जीवन का गहरा सत्य है। ये विचार हमें रोजमर्रा की भागदौड़ से निकालकर थोड़ा ठहर कर सोचने का मौका देते हैं।
तो अब बड़ा सवाल ये उठता है कि इन गहरे विचारों को हम अपनी आम जिंदगी में कैसे लागू करें, ये सिर्फ किताबी बातें ना रह जाएं।
एक व्यावहारिक कदम हो सकता है खुद का जायजा लेना। ईमानदारी से देखें कि हमारा समय, हमारी ऊर्जा, हमारा ध्यान कहाँ जा रहा है। क्या हम सिर्फ एडम आई को चमकाने में लगे हैं या एडम टू के लिए भी कुछ वक्त निकाल रहे हैं?
जैसे क्या हम अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल बनाने में ज्यादा मेहनत कर रहे हैं या अपने रिश्तों को निभाने में? ये एक अच्छा सवाल है।
बिल्कुल। और शायद अपनी कमजोरियों के प्रति नजरिया बदलना, उन्हें छुपाने या उनसे शर्मिंदा होने के बजाय उन्हें उन क्षेत्रों की तरह देखना जहां हमें काम करने की जरूरत है, जहां चरित्र बन सकता है। जैसे आइजनहावर ने अपने गुस्से को एक दुश्मन की तरह देखा जिस पर जीत पानी है।
हाँ ये बहुत पावरफुल तरीका है सोचने का। और
एक और सुझाव हो सकता है उद्देश्य के बारे में सोचते समय सवाल बदलना। मुझे क्या चाहिए की जगह पूछना यहाँ किस चीज की जरूरत है या मैं दूसरों के लिए क्या कर सकता हूँ। हो सकता है इससे हमें अपने आसपास की जरूरतों के प्रति ज्यादा संवेदनशील होने में मदद मिले।
छोटे छोटे कदम भी मायने रखते हैं, जैसे रोजमर्रा में विनम्रता का अभ्यास करना, किसी मीटिंग में बोलने से पहले दूसरों को ध्यान से सुनना।
हाँ, या किसी की मदद के लिए चुपचाप आगे आना बिना श्रेय लिए, अपनी गलती हो जाने पर उसे स्वीकार करने का साहस दिखाना।
बिल्कुल। और अपनी प्राथमिकताओं को जांचना, क्या हमारा प्रेम व्यवस्थित है, क्या हमने चीजों को सही क्रम में रखा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने आराम को ईमानदारी से ऊपर या पैसे को रिश्तों से ऊपर रख दिया है। ये आत्मचिंतन हमें वापस पटरी पर ला सकता है।
सही कहा। मेरे लिए इस पूरी चर्चा से सबसे बड़ी सीख एडम आई और एडम टू का ढांचा ही है। ये जीवन के दो जरूरी लेकिन अलग अलग आयामों को समझने में बहुत मदद करता है और ये सवाल खड़ा करता है कि इन दोनों के बीच स्वस्थ संतुलन कैसे बनाया जाए, जो आज शायद सबसे बड़ी चुनौती है।
और मेरे लिए जो बात सबसे ज्यादा घर कर गई वो है संघर्ष का महत्व। ये विचार कि चरित्र आराम कुर्सी पर बैठकर नहीं बनता बल्कि जीवन की भट्टी में तपकर ही निखरता है, ये सुनना शायद अच्छा ना लगे लेकिन इसमें एक गहरी सच्चाई छिपी है कि चुनौतियां हमें तोड़ती नहीं गढ़ती हैं, अगर हम उनसे सही तरह से निपटें। तो चलिए श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। ये सोचने के लिए कि अगर समाज लगातार एडम आए यानी बाहरी सफलता पर ही जोर देता रहेगा तो क्या सिर्फ व्यक्तिगत प्रयासों से एडम टू यानी आंतरिक चरित्र को मजबूत करना काफी होगा या हमें अपनी संस्कृति और मूल्यों पर भी सामूहिक रूप से पुनर्विचार करने की जरूरत है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।